एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। हाँ, लेकिन इसे हम देखेंगे एक बिल्कुल अलग नजरिए से।
बिल्कुल।
मैं सार्वजनिक कानून और संवैधानिक सिद्धांत का अध्येता हूँ और आज हम मार्टिन लॉफलिन के विचारों को समझेंगे। उनकी किताबें हैं द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, अ रेवोल्यूशनरी अंडरस्टैंडिंग और द ब्रिटिश पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें जो बातें हैं उन पर चर्चा करेंगे।
और ये विषय आज इतना जरूरी क्यों है? मतलब ब्रिटेन का संविधान ठीक है, पुराना है, प्रभावशाली है।
हाँ, लेकिन अक्सर लोग इसे ठीक से समझते नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई बिना किसी एक लिखी हुई किताब के ये देश चलता कैसे है।
सही कहा। लॉफलिन का काम हमें दिखाता है कि ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है, अंदर की बातें। और ये समझ मुझे लगता है आज की राजनीति को देखने का नजरिया भी बदल सकती है।
बिल्कुल। और सिर्फ ब्रिटेन की बात नहीं है, ये किसी भी लोकतंत्र के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।
तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये बताइए, ये मार्टिन लॉफलिन है कौन और क्या खास बात है इनके काम में?
मार्टिन लॉफलिन वो LSE मतलब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, वहाँ पब्लिक लॉ के प्रोफेसर हैं और ब्रिटिश एकेडमी के फेलो भी।
ओह, तो काफी जाने माने विद्वान हैं।
हाँ, ब्रिटेन के सबसे अहम संवैधानिक विचारकों में से एक माने जाते हैं। लेकिन उनकी खासियत सिर्फ ये नहीं कि वो कानून जानते हैं।
हाँ, मैंने भी पढ़ा कि वो कानून को अकेले में नहीं देखते, वो उसे राजनीति और इतिहास के साथ जोड़कर देखते हैं।
बिल्कुल सही। उनका जो नजरिया है उसे कहते हैं पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, राजनीतिक संविधानवाद।
ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, राजनीतिक संविधानवाद। आसान शब्दों में क्या है ये?
इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी देश के संविधान के नियम वो सिर्फ कोर्ट्स के फैसलों से नहीं बनते। असल में जो लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया होती है, जैसे चुनाव हो गए, संसद में बहसें हुई, राजनीतिक समझौते हुए, ये चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं संविधान को बनाने और चलाने में।
अच्छा, मतलब अदालतों से ज्यादा राजनीति।
हाँ, एक तरह से कम ब्रिटिश संदर्भ में लॉफलिन यही तर्क देते हैं और वो दशकों से इसी नजरिए से ब्रिटिश संविधान को देख रहे हैं। तो उनके विचार सिर्फ किताबी नहीं है, उनमें जमीनी हकीकत की समझ है।
तो वो सिद्धांत और व्यवहार दोनों को साथ लाते हैं।
हाँ, उनके बीच का जो गैप है उसे भरते हैं।
दिलचस्प है। तो उनकी किताबों का मुख्य आइडिया क्या है, सबसे बड़ा तर्क क्या है उनका?
लॉफलिन का जो सेंट्रल आइडिया है वो काफी कह सकते हैं क्रांतिकारी है। वो कहते हैं कि भाई ब्रिटिश संविधान जो है वो असल में एक राजनीतिक संविधान है।
राजनीतिक संविधान
मतलब
ये कि वो कोई एक कानूनी दस्तावेज नहीं है जिसे किसी खास दिन बैठकर लिखा गया हो, जैसे अमेरिका का संविधान है या अपना भारत का है।
तो फिर ये है क्या चीज अगर कोई नियमों की किताब नहीं है तो?
इसे ऐसे सोचिए कि ये एक तरह का ताना बाना है जिसमें प्रथाएं हैं, सिद्धांत है, आपसी समझ है। किस बारे में? सार्वजनिक शक्ति को, मतलब सरकार की ताकत को कैसे कंट्रोल किया जाए। और ये ताना बाना लगातार बदलता रहता है, विकसित होता रहता है।
अच्छा, तो वो इस बात को नहीं मानते कि ब्रिटेन का कोई संविधान ही नहीं है, जो अक्सर कहा जाता है?
बिल्कुल नहीं मानते। वो कहते हैं ये मिथक है, ये सच है कि वो एक किताब में नहीं लिखा, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं। वो कहते हैं कि ये बहुत ही परिष्कृत, जटिल और असरदार सिस्टम है।
और इस सिस्टम की नींव क्या है, किस पर टिका है? इसकी नींव है संसदीय संप्रभुता, मतलब संसद ही सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है। और ये सिस्टम कोई एक दिन में नहीं बन गया है, सदियों लगे हैं। राजनीतिक उतार चढ़ाव हुए, कोर्ट के फैसले आए, संस्थाएं बनी, धीरे धीरे ये विकसित हुआ है।
और इसे समझने के लिए वो एक खास टर्म इस्तेमाल करते हैं।
हाँ, पॉलिटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस, राजनीतिक विधिशास्त्र। मतलब आपको कानून, राजनीति और संवैधानिक सिद्धांत तीनों को मिलाकर देखना होगा।
ये बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगी कि उनके हिसाब से संविधान का लिखा हुआ न होना ही इसे ज्यादा लचीला बनाता है, ज्यादा अनुकूलनीय है। ये तो आम सोच से बिल्कुल उल्टा है।
हाँ, और यही उनके विश्लेषण को खास बनाता है। ये सचमुच सोचने पे मजबूर करता है। उनके विचार उन सबके लिए जरूरी हैं जो ये समझना चाहते हैं कि ब्रिटिश लोकतंत्र या कोई भी लोकतंत्र पर्दे के पीछे असल में कैसे काम करता है। छात्र हों, अकेडमिक्स हों, अधिकारी हों या बस कोई भी जिज्ञासु नागरिक।
चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, कुछ मुख्य कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। लॉफलिन संविधान की शुरुआत कैसे करते हैं, कहां से?
वो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं कि भाई संविधान का मतलब क्या है। तो ये सार्वजनिक शक्ति को व्यवस्थित करने का एक तरीका है, फिर वो तुलना करते हैं ब्रिटिश मॉडल की अमेरिकी या फ्रांसीसी मॉडल से।
हाँ, वो तो क्रांति के बाद बने थे एक खास समय पर।
बिल्कुल, जबकि ब्रिटिश मॉडल वो वैसा नहीं है, वो धीरे धीरे विकसित हुआ है, ऐतिहासिक है।
तो ये कोई ऐसा नक्शा नहीं है कि सरकार को कैसे चलना चाहिए?
नहीं, उससे ज्यादा ये इस बात का रिकॉर्ड है कि शासन कैसे चलता आया है, इतिहास की उपज है एक तरह से। और यही वो पॉलिटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस वाली बात आती है कि आप ब्रिटिश संविधान को उसके इतिहास और राजनीतिक संदर्भ के बिना समझ ही नहीं सकते। कानून या राजनीति और इतिहास में एकदम गुंथा हुआ है।
और इतिहास में वो हमें कहाँ ले जाते हैं, मतलब कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण हैं उनके हिसाब से?
वो हमें ले जाते हैं 17वीं सदी के इंग्लैंड में, जब राजा और संसद के बीच सत्ता के लिए जबरदस्त संघर्ष चल रहा था, और उसमें भी खासतौर पर 1688 की गौरवशाली क्रांति, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, वो एक टर्निंग पॉइंट था।
अच्छा, तो उस क्रांति से क्या नतीजा निकला? क्या कानून सबसे ऊपर हो गया?
यही लॉफलिन एक बहुत जरूरी बात कहते हैं जो अक्सर लोग गलत समझते हैं। वो कहते हैं कि 1688 के समझौते का नतीजा ये नहीं था कि कानून राजनीति से ऊपर हो गया।
अच्छा, तो फिर क्या हुआ?
हुआ ये कि संप्रभुता, मतलब अल्टीमेट पावर, सर्वोच्च शक्ति, वो एक राजनीतिक संस्था को दी गई। किसे? किंग इन पार्लियामेंट, यानी संसद, जिसमें राजा या रानी भी शामिल है। तो मतलब ये हुआ कि संसद ही सर्वोच्च है, कोई लिखी हुई किताब या कोई कोर्ट नहीं।
और यहीं से वो सिद्धांत आता है जिसकी बात आपने की, संसदीय संप्रभुता, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी। इसे ब्रिटिश संविधान की रीढ़ कहते हैं। इसके मायने क्या है? ठीक ठीक
हाँ, देखिए, इसके दो मुख्य पहलू हैं। एवी डाइसी ने इन्हें साफ किया था। पहला, संसद कोई भी कानून बना सकती है या रद्द कर सकती है, उसकी शक्ति पर कोई कानूनी रोक नहीं है।
कोई भी कानून, मतलब कुछ भी
कानूनी तौर पे।
हाँ।
और दूसरा पहलू, कोई भी दूसरी संस्था, यहां तक कि अदालतें भी, संसद के बनाए कानून को गैर कानूनी या अमान्य घोषित नहीं कर सकती।
लेकिन क्या ये ताकत सचमुच अनलिमिटेड है, असलियत में भी?
नहीं, यही लॉफलिन फिर से फर्क बताते हैं। वो कहते हैं कि ये एक कानूनी सिद्धांत है, राजनीतिक हकीकत अलग है। असल में तो संसद कई चीजों से बंधी होती है, चुनाव होते हैं, जनता की राय होती है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, पार्टी के अंदर का दबाव होता है।
हाँ, ये तो है।
लेकिन कानूनी तौर पर उसकी शक्ति सर्वोच्च मानी जाती है, और इसी से लचीलापन भी आता है। संसद बदलती जरूरतों के हिसाब से कानून बदल सकती है बिना किसी बड़ी संवैधानिक अड़चन के।
ठीक है, ये तो हुई संसद की बात, वो कानून बनाती है, लेकिन रोजमर्रा का शासन कैसे चलता है? अगर सब कुछ लिखा नहीं है तो मंत्री कैसे काम करते हैं, प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है, रानी या राजा क्या करते हैं?
यहाँ पर एक और बहुत जरूरी चीज आती है, संवैधानिक परंपराएं, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस। ये बहुत महत्वपूर्ण है।
परंपराएं मतलब रीति रिवाज?
हाँ, लेकिन ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, ये वो अलिखित नियम और प्रथाएं हैं जो पूरे सिस्टम को चलाती हैं। जैसे ये परंपरा है कि मंत्री संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं, या प्रधानमंत्री वही बनेगा जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत का समर्थन हो, या राजा रानी हमेशा सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। ये बातें किसी कानून में लिखी हुई नहीं मिलेंगी आपको।
ये तो बड़ी अजीब बात है, अगर ये नियम कानून में लिखे ही नहीं है तो इनका पालन कैसे होता है? मतलब अगर कोई मंत्री इनका उल्लंघन कर दे तो क्या होता है?
यहीं पर लॉफलिन का वो राजनीतिक संविधान वाला तर्क और मजबूत हो जाता है। देखिए, इन परंपराओं को आप कोर्ट में ले जाकर लागू नहीं करवा सकते, कोई जज सजा नहीं दे सकता।
तो फिर?
लेकिन इनका उल्लंघन करने के राजनीतिक नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। हो सकता है मंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाए, सरकार गिर सकती है, अगली बार चुनाव हार सकते हैं। लॉफलिन एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि ये परंपराएं राजनीतिक व्यवहार को संवैधानिक दायित्व में बदल देती हैं।
वाह, मतलब डर कानून का नहीं, राजनीति का है। ये तो बिल्कुल अलग तरह की सोच है।
हाँ।
अच्छा, आप एक और मुश्किल सवाल पर आते हैं, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। अगर संसद कुछ भी कानून बना सकती है जैसा आपने कहा, तो फिर कानून के शासन का क्या मतलब हुआ? ये दोनों बातें तो एक दूसरे के खिलाफ लगती हैं।
हाँ, ये ब्रिटिश सिस्टम का एक केंद्रीय तनाव है, एक तरफ सर्वशक्तिमान संसद, दूसरी तरफ कानून के शासन का सिद्धांत। तो लॉफलिन इसे कैसे समझाते हैं? वो कहते हैं कि अदालतों का काम है ये देखना कि सरकार, यानी कार्यपालिका, वो संसद द्वारा दी गई शक्तियों के दायरे में काम कर रही हैं या नहीं।
अच्छा, मतलब वो सरकार के फैसलों को जांच सकती हैं।
हाँ, वो सरकारी फैसलों की वैधता, लीगैलिटी जांच सकती हैं, लेकिन वो संसद के बनाए कानून की वैधता पर सवाल नहीं उठा सकती। मतलब ये नहीं कह सकती कि संसद का बनाया कानून ही गलत है, कुछ खास मामलों को छोड़कर, जैसे पहले ईयू कानून के संदर्भ में होता था।
तो अदालतें सरकार पे तो लगाम रखती हैं पर संसद पर नहीं?
मोटे तौर पर हाँ, उनका काम है ये पक्का करना कि सरकार उस कानून का पालन करे जो संसद ने बनाया है। ये अमेरिकी सिस्टम से बहुत अलग है, जहां शक्तियों का पृथक्करण है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। वहां कोर्ट कांग्रेस यानी उनके संसद के बनाए कानूनों को भी असंवैधानिक करार दे सकती है।
और ब्रिटेन में?
ब्रिटेन में कार्यपालिका सरकार और विधायिका संसद का विलय या फ्यूजन ऑफ पावर्स है। मंत्री संसद के ही सदस्य होते हैं, वहीं बैठते हैं, उसी के प्रति जवाबदेह होते हैं।
इससे तो सरकार बहुत ताकतवर हो जाती होगी, संसद के अंदर से ही सरकार निकल रही है।
हाँ बिल्कुल, इसीलिए कभी कभी इसे चुनावी तानाशाही या इलेक्टिव डिक्टेटरशिप भी कह दिया जाता है। लेकिन लॉफ्लिन के मुताबिक इस पर जो नियंत्रण है वो मुख्य रूप से कानूनी नहीं बल्कि राजनैतिक है।
राजनैतिक नियंत्रण जैसे?
जैसे संसद में सवाल जवाब होते हैं, बहसें होती हैं, कमिटियां जांच करती हैं, विपक्ष दबाव बनाता है, मीडिया छानबीन करती है, और आखिरी में सबसे बड़ा नियंत्रण चुनाव।
समझ गई, तो ये तो हुई बुनियादी संरचना, लेकिन क्या ये व्यवस्था हमेशा से ऐसी ही रही है या हाल के सालों में कुछ बदलाव या चुनौतियां आई हैं?
नहीं, ये लगातार विकसित होती रही है, और हाल के वर्षों में तो कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां आई हैं जिन्होंने इस सिस्टम को परखा है। सबसे पहला तो यूरोपीय संघ की सदस्यता।
हाँ, वो तो बहुत बड़ा मुद्दा था।
बिल्कुल, एक बहुत मशहूर केस था फैक्टोरियो टिम केस। उसमें ब्रिटिश अदालतों को यह मानना पड़ा कि कुछ मामलों में ईयू का कानून संसद के बनाए कानून से ऊपर होगा। अब ये तो संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के लिए सीधी चुनौती थी।
तो फिर ब्रेग्जिट को लॉफ्लिन कैसे देखते हैं? क्या वो इसी चुनौती का जवाब था?
हाँ, काफी हद तक लॉफ्लिन उसे संसदीय संप्रभुता को फिर से स्थापित करने की एक राजनीतिक कोशिश के तौर पर देखते हैं। मतलब ये फैसला कि भाई ब्रिटेन के कानून ब्रिटेन की संसद ही बनाएगी, कोई बाहरी संस्था नहीं।
ठीक है, और दूसरी बड़ी चुनौती?
दूसरी है हस्तांतरण, डेवोल्यूशन। मतलब स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड को अपनी अपनी संसदें या विधानसभाएं और कुछ शक्तियां देना।
हाँ, तो क्या इससे संसद की संप्रभुता कम हो गई?
लॉफ्लिन के हिसाब से नहीं, वो कहते हैं कि ये शक्तियां देना भी संप्रभु संसद का ही एक राजनीतिक फैसला था। कानूनी तौर पर संसद चाहे तो ये शक्तियां वापस ले सकती है।
लेकिन क्या वो ऐसा करेगी? राजनीतिक रूप से तो ये बहुत मुश्किल होगा।
हाँ, राजनीतिक रूप से शायद असंभव ही हो, और यही दिखाता है कि संप्रभुता का सिद्धांत तो बना हुआ है पर उसका इस्तेमाल कैसे होता है वो बदल गया है। राजनीति यहाँ फिर से कानून पर भारी है।
और एक और चीज थी, मानवाधिकार अधिनियम 1998, ह्यूमन राइट्स एक्ट HRA, उसने क्या बदला?
HRA ने यूरोपीय मानवाधिकार कन्वेंशन को सीधे ब्रिटिश कानून का हिस्सा बना दिया। इससे जजों को एक नई शक्ति मिली, वो संसद के बनाए कानूनों की समीक्षा कर सकते थे ये देखने के लिए कि वो मानवाधिकारों के हिसाब से ठीक हैं या नहीं।
तो क्या वो कानून रद्द कर सकते थे?
नहीं, यहीं पर संसदीय संप्रभुता को बचाने का एक रास्ता निकाला गया।
अच्छा, कैसे?
जज किसी कानून को रद्द स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते, वो सिर्फ उसे असंगत इनकम्पैटिबल घोषित कर सकते हैं। मतलब वो कह सकते हैं कि ये कानून मानवाधिकारों के साथ मेल नहीं खाता।
और फिर?
फिर ये संसद पर निर्भर करता है कि वो उस कानून को बदलना चाहती है या नहीं। अंतिम फैसला फिर से संसद का ही रहता है। तो ये दिखाता है कि कैसे सिस्टम ने एक नई चुनौती को भी अपने मूल ढांचे के अंदर ही एडजस्ट करने की कोशिश की।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो लॉफ्लिन के जो मुख्य संदेश हैं वो क्या हैं? सबसे जरूरी बातें क्या हैं?
मुझे लगता है सबसे पहला और सबसे जरूरी संदेश है राजनीति की प्रधानता। ब्रिटेन में आखिरी नियम कानूनी किताबों से ज्यादा राजनीतिक हकीकतें तय करती हैं। सुप्रीम पावर संप्रभुता वो एक राजनीतिक संस्था यानी संसद में है, और उस पावर पर कंट्रोल भी ज्यादातर राजनीतिक तरीकों से होता है।
हाँ, ये भारत जैसी व्यवस्थाओं से बिल्कुल अलग है, जहां हम कहते हैं कि संविधान सर्वोच्च है और अदालतें उसकी व्याख्या करती हैं।
बिल्कुल। दूसरा संदेश शायद ये है कि ब्रिटिश संविधान एक ऐतिहासिक प्रक्रिया का नतीजा है, कोई एक बार में बना हुआ उत्पाद नहीं। इसे समझने के लिए आपको इतिहास में जाना ही होगा, खासकर 1688 की क्रांति और उसके बाद जो धीरे धीरे विकास हुआ। इसका लिखा ना होना कोई कमी नहीं, बल्कि इसके बनने के तरीके का ही परिणाम है। ये लगातार बदलता रहा है, इवॉल्व होता रहा है।
तीसरा पॉइंट क्या होगा?
तीसरा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद संसदीय संप्रभुता आज भी केंद्रीय सिद्धांत है। ब्रेग्जिट जैसी घटनाएं दिखाती हैं कि ये विचार आज भी कितना ताकतवर है। हाँ, इसकी व्याख्या बदल सकती है, इसकी सीमाएं बदल सकती हैं, लेकिन ये सिस्टम का वैचारिक आधार बना हुआ है।
और चौथा
लचीलापन और अनुकूलन क्षमता। आपने भी कहा था कि ये आम सोच के उलट है। हाँ, अलिखित होने से थोड़ी अस्पष्टता आती है, कन्फ्यूजन हो सकता है, जिसकी आलोचना भी होती है, लेकिन लॉफ्लिन इसे एक ताकत की तरह देखते हैं। हाँ, क्योंकि ये सिस्टम को बिना किसी बड़े संवैधानिक संकट के धीरे धीरे नई परिस्थितियों के हिसाब से ढलने देता है, जैसे एचआरए को सिस्टम में शामिल कर लिया गया।
और पांचवा
जिसे लॉफ्लिन पॉलिटिकल जुरिस्प्रूडेंस कहते हैं, वो है कानून और राजनीति का गहरा अटूट जुड़ाव। अब ब्रिटेन के संविधान को सिर्फ कानून के चश्मे से नहीं समझ सकते, ना ही सिर्फ राजनीति के, आपको दोनों को मिलाकर देखना होगा कि नियम कैसे बनते हैं, कैसे लागू होते हैं और कैसे राजनीतिक ताकतें उन्हें लगातार प्रभावित करती रहती हैं।
ये सब समझने के बाद ना लॉफ्लिन के कुछ वाक्य या विचार बहुत असरदार लगते हैं, जैसे उनका वो कहना कि ब्रिटिश संविधान पाठ के रूप में नहीं बल्कि व्यवहार के रूप में मौजूद है। ये कितनी सीधी और गहरी बात है।
हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि ये नियमों की लिस्ट से कहीं ज्यादा है, एक जीवित परंपरा है, एक प्रैक्टिस है।
या फिर ये वाला, संसदीय संप्रभुत्व संवैधानिक अधिकार का आधार और सीमा दोनों है। ये सुनने में विरोधाभासी लगता है, पर इसका मतलब शायद ये है कि यही सिद्धांत सरकार को काम करने की शक्ति देता है, पर यही सिद्धांत ये भी तय करता है कि वो शक्ति संसद से आती है और संसद के प्रति ही वो जवाबदेह है।
सही पकड़ा,
है ना?
ये शक्ति का स्रोत भी है और उसे सीमित भी करता है एक तरह से।
और परंपराओं के बारे में उनकी वो बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। संवैधानिक परंपराएं राजनीतिक व्यवहार को संवैधानिक दायित्वों में बदल देती हैं। ये समझाता है कि बिना लिखे नियम भी कितने बंधनकारी, कितने बाइंडिंग हो सकते हैं।
हाँ, और उनका ये कहना है कि ब्रिटिश संविधान की विशेषता क्रांतिकारी परिवर्तन के बजाय विकासवादी अनुकूलन है। ये उस स्थिरता और बदलाव के बीच के संतुलन को दिखाता है जो इस सिस्टम में है।
अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इन सब विचारों का, इस पूरी चर्चा का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी या हमारी समझ पर क्या असर पड़ता है? इनका व्यावहारिक महत्व क्या है किसी आम इंसान के लिए?
देखिए, सबसे सीधा फायदा तो यह है कि अगर आप ब्रिटेन की राजनीति में रुचि रखते हैं तो वहां जो कुछ हो रहा है, ब्रेग्जिट क्यों हुआ, स्कॉटलैंड की आजादी की मांग क्यों उठती है, सरकार और अदालतों के बीच कभी कभी तनाव क्यों होता है, इन सबको समझना आसान हो जाता है। लॉफ्लिन का नजरिया इन सबके पीछे के संवैधानिक तर्क को समझने में मदद करता है।
हाँ, और ये भी समझ आता है कि जब वहाँ कोई कहता है कि फलाना चीज असंवैधानिक है, तो उसका मतलब अक्सर ये होता है कि ये किसी गहरी राजनीतिक परंपरा के खिलाफ है, जरूरी नहीं कि किसी लिखे हुए कानून के खिलाफ हो।
बिल्कुल, दूसरा ये हमें तुलना करने में मदद करता है। हम सोचते हैं कि लोकतंत्र के लिए लिखा हुआ संविधान ही जरूरी है, ब्रिटेन दिखाता है कि ऐसा जरूरी नहीं है, बिना लिखे संविधान के भी एक मजबूत लोकतंत्र चल सकता है। कैसे, ये सोचने वाली बात है।
और नागरिकों के लिए इसका क्या मतलब है?
नागरिकों के लिए इसका मतलब है कि उन्हें ये समझना चाहिए कि अगर शक्ति मुख्य रूप से राजनीतिक है तो राजनीतिक जवाबदेही कितनी महत्वपूर्ण है। यानी वोट देना, अपने प्रतिनिधियों से सवाल पूछना, उन पर दबाव बनाना, ये सब बहुत जरूरी हो जाता है।
हाँ, और जो लोग सिस्टम के अंदर काम करते हैं, वकील, सिविल सर्वेंट्स, नेता, उनके लिए
ये अलिखित नियमों, परंपराओं और राजनीतिक माहौल को समझने की अहमियत बताता है। सिर्फ कानून की किताब पढ़ लेना काफी नहीं है, आपको ये भी समझना होगा कि चीजें असल में काम कैसे करती हैं, राजनीतिक हवा किस तरफ बह रही है।
हाँ, ये हमें सतह के नीचे देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। सिर्फ ये नहीं पूछना कि नियम क्या है, बल्कि ये भी पूछना कि ये नियम क्यों है, कहाँ से आया और असल में इसे बनाए कौन रखता है।
बिल्कुल, तो इस पूरी बातचीत से आपके लिए सबसे बड़ा सबक या सबसे हैरान करने वाली बात क्या रही?
मेरे लिए शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि संविधान का कोई एक ही मॉडल नहीं होता, कोई एक ही सही तरीका नहीं है। लिखित संविधान अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन ब्रिटेन का उदाहरण दिखाता है कि एक अलिखित, धीरे धीरे विकसित होती हुई प्रणाली भी सदियों तक सफलतापूर्वक काम कर सकती है और काफी परिष्कृत भी हो सकती है। इसकी जो जटिलता है, जो बारीकियां हैं, वो वाकई सराहनीय है।
और मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात शायद यही थी कि कैसे अलिखित परंपराएं, वो कन्वेंशंस, असल में कानून जितनी ही ताकतवर हो सकती हैं। ये दिखाता है कि संविधान सिर्फ कागज पे लिखी चीज नहीं है, वो लोगों के विश्वास में, उनके व्यवहार में, उनकी राजनीतिक संस्कृति में जीता है। और जब वो विश्वास या वो संस्कृति कमजोर होती है तो संकट आता है, भले ही कोई कानून ना तोड़ा गया हो।
मेरे लिए एक स्थायी अंतर्दृष्टि ये है कि ब्रिटिश व्यवस्था का जो मूल तत्व है वो संसद की सर्वोच्चता, सरकार की शक्ति और अदालतों की भूमिका के बीच एक निरंतर चलने वाला संतुलन साधने का प्रयास है। ये संतुलन कभी स्थिर नहीं रहता, ये हमेशा बदलता रहता है, निगोशिएट होता रहता है।
और शायद श्रोताओं के लिए हम एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। ब्रिटेन का यह अनुभव, जहां राजनीति इतनी केंद्रीय भूमिका में है, यह हमें लिखित संविधानों की सीमाओं या उनकी संभावनाओं के बारे में क्या सिखाता है? क्या राजनीतिक संविधानवाद के कुछ तत्व, जैसे राजनीतिक प्रक्रियाओं और जवाबदेही पर ज्यादा जोर देना, दुनिया की दूसरी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं जैसे हमारी अपनी के लिए भी कुछ मायने रख सकते हैं?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।